Thank you. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. सभी का स्वागत है. इतने दूर आए, दूर है अब तो. अभी तो एक आप तो यही कहो. जितने अधिक दूर से जो आते हैं उनसे अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं. श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला स्कंद अध्याय 17 वा श्लोक 32 संख्या. त्वां वर्तमानं नरदेव देहे त्वां वर्तमानं नरदेव देहे स्वनुप्रवृत्तो यम धर्मपूगः स्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनोर्यहम् लोभो नृतं चौर्यमनोर्यमह चेष्टा च माया कलहश्च दम्भः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः त्वां वर्तमानं नरदेव देहे स्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनोर्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः संधि है. चौर्यम अनार्यम अहो चौर्यम अनार्यम अहो. नेक्स्ट.
त्वां वर्तमानं नरदेव देहे
नरदेहे
सन्तो मधर्म चौर्यम नार्यम अहो
वर्तमानम उपस्थित नरदेव देहेषु हे मनुष्य देवता या राजा देह में या तो मनुष्य के देवता या राजा के देह में अनुप्रवृत्तः सर्वत्र घटित होकर अयम ये सारे अधर्म अधर्म पूगह जन समूह में लोभ लोभ अनृतम असत्य चौर्यम डकैती अनार्यम अशिष्टता अहम विश्वासघात ज्येष्ठा दुर्भाग्य च तथा माया छल कलह झगड़ा च तथा दंभ घमंड। यदि अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद। यदि कलि रूपी अधर्म को मनुष्य देवता या किसी कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो लोभ असत्य डकैती अशिष्टता विश्वासघात दुर्भाग्य कपट कलह तथा दंभ जैसे धर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। राजा ने कहा, ये राजा उवाच है। यदि कली रूपी अधर्म को मनुष्य देवता या किसी कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो लोभ असत्य डकैती किंचित थोड़ा सा अशिष्टता विश्वासघात दुर्भाग्य कपट कलह तथा दंभ जैसे धर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। हरि 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 हरे गौरा हरि भाव बढ़ा दो थोड़ा। हरे कृष्ण हरे हरे हरे। तात्पर्य, किसी भी मत के अनुयायी धर्म के सिद्धांतों और वे सिद्धांत है तप पवित्रता दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। कोई भी धर्म के अनुयायी धर्म के सिद्धांतों जैसे कि तप पवित्रता दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, फिर प्रभुपाद कह चुके हैं पहले। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे भगोड़ा बनकर हरिभाव धर्म के नियमों का पालन करना पड़े। कुछ ठीक नहीं हुआ। हरि भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है, धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियों न थी किसी बंद हो गया मत के सिद्धांत है, किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हरि हरि वो हरि 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 वो हरि हरि हरे हरे कृष्ण। ऐसे नियामक सिद्धांत देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा हो ले। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं। बस धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है। सुन रहे हो? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। इसको समझाएंगे बाद में। लेकिन
कलयुग में राज्य के कर्मचारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे, अतएव उनके संरक्षण में धर्म के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वभावतः अनुगमन करेंगे, जिसे राज्य में व्यभिचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी का कोई अर्थ नहीं होगा। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेश्व अनुप्रवृत्तो अयमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। यदि कलिरूपी अधर्म को मनुष्य देवता या किसी कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे धर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। धर्म का यह कहा है, ऐसे दूसरे शब्दों में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। या कुछ लोगों के ऐसा ही धर्म बनेगा उनका, या ऐसे कर्म बनेंगे उनके, ऐसा स्वभाव बनेगा उनका, नेचर, सेकंड नेचर ऐसा बनेगा। लोभ, असत्य, डकैती, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह, दंभ, कॉमन नॉलेज सर्वत्र और विस्तृत रूप में यही बनेगा लॉ, यही बनेगा सिद्धांत, यही बनेगा जीवन की शैली, लाइफस्टाइल, व्यवहार की पद्धति। लोभ कॉमन होगा, ये लोभ अच्छा नहीं है ऐसा तो कोई नहीं कहता। लोभ तो शत्रु है, लेकिन कौन जानता है लोभ शत्रु है। या काम शत्रु है, इसका नाम तो नहीं लिया है, लेकिन वो सब एक ही माला के मनी है और साथी संगी है। लोभ से ही फिर काम, लोभी वृत्ति से फिर धन जुटाया या जो भी किया लोभी, क्योंकि लोभ के पीछे तो काम वासना है, कोई इच्छा है, उस इच्छा के तृप्ति का साधन है लोभ से प्राप्त किया हुआ धन कहो तो वह, और उस लोभ के सिद्धि के लिए लोभी है हम, और जो भी हमने लक्ष्य बनाया है लोभी बन के, उसमें कोई व्यक्ति रुकावट बनता है, कोई बाधा आती है, विघ्न आता है, तो फिर क्या आएगा? क्रोध आएगा। कामात क्रोधो भी जायते, तो काम, क्रोध, लोभ, तो हमारी कामना है, कोई इच्छा है, हम कुछ धन जुटा रहे हैं, तो काम से देखो ऐसा संबंध, ऐसा भी संबंध बताया। हमारी कामना है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही, कोई विघ्न आता है, तो फिर आता है काम के बाद क्रोध आता है, कामात क्रोधो भी जायते, किंतु नहीं आया, कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति नहीं बनी, तो फिर आता है लोभ, इतना कमाया उतना कमाया और कमाएंगे और कमाएंगे, फिर लोभ। तो काम में कोई बाधा आती है तो फिर आता है क्रोध, कोई बाधा नहीं है तो हमारी जैसी योजना है, ऐसी बात बन रही है तो फिर लोभ, काम क्रोध लोभ। नरकश्य द्वारम से भगवान इन तीनों को नरक के महाद्वार के रूप में कहे है, काम क्रोध लोभ ये है शत्रु। लेकिन किसको पता है काम शत्रु है? काम को गले लगाने की बात थी कही जाती है, इसी का एक बोलबाला है या प्रभुपाल जी का, ऐसे जैसे ऐसे वैसे डकैती शिष्टता ये लोभ काम क्रोध दुर्भा कपट कलह दंभ, जैसे धर्म का निश्चय बोलबाला हो जाएगा, सर्वत्र इसी का प्रचार होगा। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सर्वत्र यही भाषा बोली जाएगी। मानो यही जीवन है या यही सही है, झूठ बारंबार कहने से फिर झूठ ही लगता है, ये सत्य होगा। सभी तो झूठ बोल ही रहे हैं, शायद यही धर्म होगा, ऐसे कर्म करने से सभी तो वाह। ये कब होगा ऐसे, या तो भविष्यवाणी मानो, भविष्यवाणी राजा परीक्षित कह रहे हैं, वो कली तो समक्ष है राजा परीक्षित के, त्वाम के त्वाम तुम, उसकी ओर उंगली करते हुए, तुम जो मेरे समक्ष हो प्रत्यक्ष हो, तुमको अगर नर देव देहे तुम वर्तमान, तुम स्थित हो जाओगे किसके देह में, मनुष्यों के या देवताओं के या कोई पदाधिकारी राजाओं के अधिकारियों के, प्रवृत्तो अयम धर्म पूगः, जन समूह में पूगः धर्म जन समूह में, फिर प्रचार होगा, इसके बाद सब सूची है किसका किसका प्रचार होगा। तुमको अगर कार्य करने दिया मनुष्य के माध्यम से, या तुम कली का रूप देवताओं के मीडियम साधन बना के उनके माध्यम से तुम कार्य करने लगोगे, तो फिर सर्वत्र ये लोभ अनृतम चौर्यम अनार्यम अशिष्ट आर्य अनार्य सभ्य असभ्य माया कलह कलह शदंभ तो उस कली को राजा परीक्षित संबोधित कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम तो जीते रहो, तुमने मेरी शरण ली है, शरण्यो तो कृपया दीन वत्सल। तो जो दीन वत्सल होते हैं वो कृपा करते हैं, क्षमा करते हैं याचना करने पर। वैसे तुम कर रहे हो तो भयम न अस्ति किंचित, तुम्हें अपने जीवन संबंध में भय की आवश्यकता नहीं, तुम तो तुमको जीवित रखा जाएगा। किंतु क्षेत्रे मदीये न वर्तितव्यम, मेरे क्षेत्र में तुम नहीं रह सकते, मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते हो। क्यों? तुम त्वम अधर्म बंधु हो, तुम अधर्म के बंधु हो, और तुमको अगर हमने सहारा दिया हमारे राज्य में तो तुम कली के रूप जब मनुष्य और देवता और राजा इत्यादियों के जरिए तुम जब कार्य करोगे तो सर्वत्र ये लोभ, असत्य, डकैती इत्यादि इत्यादि का बोलबाला होगा। ऐसे लगभग 5000 वर्ष पूर्व का ये घटना है, घटित घटना, कहानी नहीं है, गुड मॉर्निंग न्यूज। मॉर्निंग पता नहीं मॉर्निंग में हुई कि आफ्टरनून, लेकिन ये न्यूज न्यूज आइटम उस दिन का। ऐसे ऐसे कली राजा के भेष में पहुंचा, उसके हाथ में तलवार, ऐसा कुछ वर्णन है, कोई पत्रकार है तो शायद लिखता। राजा परीक्षित ने जब देखा तो मैं तलवार से उसको चुनौती दे दी और ललकारा उसको और धिक्कारा उसको, मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, ऐसा घोषित किया। ऐसा समाचार शायद अखबारों में आया होगा, नहीं आया होगा, भागवतम में तो आया है। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, इसीलिए इसकी इसका संकलन भागवत में हुआ। मोटे मोटे मेजर जो आइटम्स इवेंट्स होते हैं, वेरी मेजर, विशेष अशेष समाचार, जिसका भगवान से संबंध है या कुछ सीखने जैसा, या सावधान साधु सावधान, इसे सावधान रहो। तो वह ये विशेष घटना है, कल भी कहा, क्योंकि इसी घटना के साथ कलयुग का अशुभ आरंभ होने जा रहा है। कलयुग जो 4,28,000 वर्षों तक चलता है, कलयुग की आयु कितनी है? 4,28,000 वर्ष कलयुग, इतने वर्षों तक चलने वाला ये युग, उसका ये प्रारंभ हो रहा है। कुछ घटनाएं घटित हो रही है, कली आधमका है, और राजा परीक्षित के साथ उनका मिलन या क्या, कली को किया दंडित और कली को किया पुरस्कृत। राजा परीक्षित ने ये समाचार, एक विशेष घटना, वो जो संध्या काल, कली प्रथम संध्याया, कली के प्रथम संध्या में ये घटना घटित हो रही है, ऐसा ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा था वैसे वैसे ही हो रहा है। अब राजा परीक्षित को ऐसा पता कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तुमको कुछ स्थान देने से, उनको बढ़ावा देने से, तुमको आश्रय देने से भविष्य में ये सब संभव है। डकैती बढ़ेगी और लोभ बढ़ेगा और कलह दंभ, ये राजा परीक्षित कैसे पता चला, कैसे समझ में आता है कि ये ऐसा ऐसा होगा भविष्य में। अब टेम्परेचर क्या चल रहा है, 37 था परसों, हवाई जहाज में अनाउंस किया था, आउटसाइड टेम्परेचर इज 35 डिग्री। तो शायद लास्ट ईयर भी आप शायद बता सकते थे कि मार्च महीने में नागपुर में टेम्परेचर कुछ 35-40 डिग्री तक पहुंचेगा। कैसे आप बता सकते हो, बता सकते कि नहीं, बता सकते थे कि नहीं, या अगले साल का बता सकते हैं कि नहीं, मार्च में अंदाज अनुमान कैसे, प्रीवियस, ओके प्रीवियस, वेरी गुड। तो यही बात है, कलयुग तो प्रीवियसली तो कलयुग तो रहा है, कलयुग कुछ पहली ये सृष्टि जब से बनी है तब से पहला कलयुग नहीं है। ये इस ब्रह्मा के इस दिन का ये 28th कलयुग है। ब्रह्मा के इस दिन में कितने बार कली का आगमन हुआ है, 28 बार, और जब भी फिर कली आता है वही लक्षण, वही क्या लाया हूं कुछ जो भी है। और ब्रह्मा की उम्र अब कुछ 50 वर्ष की है, तो वह बहुत बहुत दिन हुए हैं, 50 वर्ष हुए, फिर कितने महीने और कितने दिन। तो वह इस दिन में ही, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर, 1000 त्रेता, 1000 बार कलयुग आता है ब्रह्मा के एक दिन में। फिर एक सप्ताह में कितने, और फिर एक साल में कितने, और उनकी आयु होती है 100 साल की, तो अभी 50 साल की उम्र है ब्रह्मा की। हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा 50 वर्ष के है, तो कलयुग कितने बार आया है, इस दिन में ही 28 बार आया। तो कल कहा था श्रील प्रभुपाद, ये जो चार युग है इनको सीजन कहते, ऋतु कहते हैं। सतयुग एक सीजन है, द्वापर त्रेता कली अलग अलग सीजन्स है। तो जैसे ये सीजन आते हैं, वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, ये सब तो एक के बाद एक आते हैं, हर वर्ष आते हैं। आपने शरद शतम पश्येमः, जब किसी का बर्थडे है तो विशेष आशीर्वचन क्या होता है, तुम सौ शरद सीजन देखो, देखो के देख, तुम देखो, या ऐसे हमारी मनोकामना है, शुभकामना है, यू मे सी 100 ऑटम सीजन्स, शरद सीजन कोई अच्छा होगा, इसलिए तुम सब ग्रीष्म ऋतु देखोगे, ऐसा नहीं कहा। गर्मी के सब गर्मी के ऋतु तुम देखोगे, ऐसा नहीं कहा, शरद सीजन देखोगे, शरद ऋतु अच्छा माना जाता है। दामोदर मास भी है, सभी वृंदावन पहुंचते हैं उन दिनों में। तो हुआ तो ये जैसे साल में वैसे 6 सीजन है, हम तो मोटे मोटे 3-4 ही का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन 6 सी दो हर 2 महीने के उपरांत दूसरा सीजन, दूसरा सीजन, दूसरा ऋतु, ऋतु नाम कुसुमाकरः भगवान के सर, ऋतु ऋतुओं में कुसुमाकरः, ये जो वसंत ऋतु है मैं हूं भगवान ने कहा। तो हर सीजन का अपना स्वभाव, उसके लक्षण, परिस्थिति निश्चित है। तो आपको कोई ज्योतिषी होने की आवश्यकता नहीं, ओ अगले साल मई महीने में ऐसा टेम्परेचर होगा, आपने कहा तो क्या आपके बड़े ज्योतिषी, आपको कोई पुरस्कार वगैरह मिलेगा अगले साल, फिर आपने जैसे ही कहा था वैसे ही हुआ, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, नो बिग डील करें, ये तो कोई भी आंख बंद करके कह सकता है। 7 जून को क्या होता है, वर्षा, मृग नक्षत्र शुरू होता है, कहीं ना कहीं यहां पहुंचते पहुंचते देरी लगती है थोड़ी, लेकिन 7 जून का मृग नक्षत्र, तो ये सब सेट है, ये सारे नियम भगवान ने सेट किए हुए हैं, जैसे ऋतु के, वैसे भी कलयुग का भी अपना लक्षण है। तो राजा परीक्षित ने कहा, उन्होंने सुना है वे भक्त है, विद्वान है, कली के लक्षण को भली भांति वह जानते हैं, कई बार हजारों लाखों बार ये कली पहले आ चुका है, अपना खेल जो भी नाच नृत्य दिखाया है, तो इसीलिए उनके लिए कहना संभव है कि तुम रहने से, तुमको स्थान देने से ये सब तुम्हारा नंगा नाच, पहले तो नृत्य कहा था लेकिन अच्छा नृत्य नहीं है, नंगा नाच भी अच्छा नहीं है, किसी लाभ का तो फिर तो इस कली का जो प्रभाव के कारण जो भी होगा, यह राजा परीक्षित कह रहे हैं, उससे कौन कौन से देश प्रभावित होंगे, बोलिए कौन से देश के, पहले कौन कौन से धर्म के लोग, क्या राजा अभिनाथ की, किस पर प्रभाव होगा कली का, जो मांस भक्षण करते हैं, ओके, और क्या जवाब में कहोगे, ये शास्त्र तो हिंदू शास्त्र है, ये श्रीमद् भागवत तो आपके श्रीमद् भागवत हिंदू शास्त्र का ये सब कहना है, हमने तो कली का नाम भी हमारे शास्त्र में नहीं है, और ये लक्षण जो आप कह रहे हो ये तो हमसे कुछ हमें कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ, ये तो हिंदू शास्त्र, तो ये तो हिंदू या इंडिया लिमिटेड होना चाहिए इसका प्रभाव। हमने लकीर खींच लिया, ओके इंडियंस, या तो बांग्लादेश है, हम तो श्रीलंका, बीच में तो बड़ा समुद्र है। आपका धर्म, आपका शास्त्र, आपका कली को वही रहेगा, हमारे देश में तो इसका कोई बोलबाला नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदू नहीं है, हम तो मानते नहीं है आपके भागवत को। तो हमें हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं आपके कली से, ऐसा कोई कह सकता है कि ये जो कहे हैं यहां कली, यदि कली रूपी अधर्म को इनके इनके कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो वो लोभ और असत्य, ये अशिष्टता, विश्वासघात इत्यादि इत्यादि फैलेगा, फिर प्रचार होगा इसका। तो ये अवगुण जो है, जिसको वैसे उसी बैठक में, उसी धर्म सभा में सुखदेव गोस्वामी कहे थे राजा परीक्षित को, कलेर दोष निधे राजन, हे राजा कलेर दोष निधे, कली होगा दोष का निधि, दोष कली कलमश, कली कलमश से पूर्ण होगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी वहां जो कहे, या राजा परीक्षित यहां कुछ कह रहे हैं, वे किसी देश विशेष, पर्टिकुलर कंट्री या धर्म का विचार नहीं कर रहे, मनुष्य कहा है, मनुष्य है या देवता भी है, कोई कार्यकारी करता कार्य करता है उसके रूप में, तो कली के कली रूपी अधर्म को मनुष्य देवता कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो ये सब होगा। मनुष्य कहा है वो मनुष्य, फिर किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का, किसी भी आर्थिक स्तर का, या किसी भी रंग का, या फिर किसी भी धर्म का, तथा कथित धर्म, उसकी भी चर्चा आएगी, कोई भी नहीं छूटेगा। तो सत्ययुग जब आता है तो सत्ययुग भी सर्वत्र होता है, वो भी इंडिया लिमिटेड, हिंदू लिमिटेड नहीं होता है। या फिर द्वापर त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, और फिर कलि युग आता है, इसका प्रचार सर्वत्र होता है। इसे तो बंटवारा होता है, कलह है ना, देश देश के बीच में कलह हो रहा है, तुम हो, हम है, अहम ममेति, ये भाव बढ़ता है इस कलयुग में, अयम निजः पराबेति, ये लोग हमारे पराये है, गणना लघुचेतसाम, तो संकीर्ण विचार शुरू होता है, कली आने से या ये राजसिकता बढ़ती है और राजसिकता करती है विभाजन करती है टुकड़े करती है। सत्वगुण जोड़ता है तो रजगुण तोड़ता है। तो ऊपर ये सारे पृथ्वी के ऊपर तीन गुण ऊपर से ही मेरी डोरी तेरे हाथ ऊपर वाले के हाथ में सारी डोरियां है। डोरियां तो ज्यादा नहीं है वैसे। कितनी डोरियां है? तीन डोरी है बस। तीन डोरी है सत्वगुण की डोरी है रजगुण की डोरी है और तमगुण की डोरी है। तो नीचे कहां डोरी जाए? कौन से देश में डोरी पहुंच रही है? केवल उनकी डोरी भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं चलती। उनकी डोरी तो लंका भी पहुंचती है, नेपाल भी पहुंचती है, चीन भी पहुंचती है। और चाइनीज नहीं, ये कहां से डोरी आ रही है? वृंदावन की ओर से आ रही है। काट लो इसको, काट डालो। ये ऐसी अदृश्य डोरी है, इनविजिबल, इतनी सूक्ष्म है ये तीन गुण और उनके प्रभाव। मम माया धृत्यया, धृत्य उसको टालना कठिन है। मम माया ओवरकम, उसको टू ओवरकम दिस, उसको उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाना, इस इन तीन गुणों का हम दमन करें और ऊपर चढ़े, जैसे कालिया का दमन कृष्ण किए और उसके फणों पर जाके खड़े हुए भगवान जैसे। तो हम बद्ध जीव इन तीन गुणों के ऐसे संभव तो है, लेकिन केवल अपने स्वयं के शक्ति और सामर्थ्य से नहीं होगा। तीन डोरियों को काटा जा सकता है, टुकड़े किए जा सकते, उसका दमन किया जा सकता है, किंतु हमारे अपने सामर्थ्य से नहीं होगा। यही तो बात भगवान गीता में कह रहे हैं, दैवी एषा ही गुणमयी मम माया। मेरी माया कैसी है? तो भगवान तो कुछ अलग अलग लोगों ने मान लिया, अलग अलग भगवान है, लेकिन माया तो एक ही सभी के लिए। भगवान भी एक ही है, कुछ लोगों ने मान लिया, हमारे आपके कृष्णा, हमारे अल्लाह, हमारे यहोवा, हमारे नानक, हमारा क्या, हमारा क्या, हमारा व्हाटएवर, हमारे निराकार भगवान। लेकिन माया तो एक ही है, ऐसे भगवान भी एक ही है, लेकिन माया भी तो सभी के लिए एक ही है। तो कैसी है माया? दैवी ईशा ही गुणमयी माया। ये तीन गुणों का जो ज्ञान है भागवत धर्म में, गीता भागवत में, ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं है। ये जो तीन गुणों से सब कुछ होता है, ये ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये और कहीं नहीं पाया जाता। तीन गुणों का ही संबंध है, कल भी कहा था, चार युगों से सत्य त्रेता द्वापर कली का संबंध तीन गुणों से है। ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्णाश्रम धर्म है, उसका संबंध तीन गुणों से है। हमारे जो भोजन है उसका तीन गुणों से संबंध है। कुछ पदार्थ तामसिक, कुछ राजसिक, कुछ सात्विक आहार। हमारी जो वेशभूषा है, सभी में ये तीन गुणों की चाल है या स्पर्श है या कुछ प्रभाव है। हम जहां रहते हैं वो स्थान भी या तो तमोगुणी स्थान हो सकता है, रजगुणी स्थान हो सकता है, सत्वगुणी स्थान हो सकता है, उसके सारे लक्षण हैं। 18 अध्याय जो गीता के हैं, भगवान ने जो भी समय था उस युद्ध की इमरजेंसी चल रही थी तो वहां पर कहा, तीन गुणों के संबंध में सत्वगुण को समझो, रजोगुण को समझो और तमगुण को समझो। किसी लिए समझो? ताकि गुणातीत, गुणों के अतीत पहुंचना है। अगर हम बंधन में है तो ये तीन गुणों का बंधन है। तो जब तक पता ही नहीं किसने बांध लिया हमको, तब तक बंधन छूटेंगे कैसे? ये तीन गुणों का बंधन है। तो हर जहां तहां सर्वत्र तीन गुण, दान भी देते तो उसमें गुण का प्रभाव, तमोगुणी दान है, रजगुणी दान है, सत्वगुणी दान है, तो गुणाती दान है। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, भगवान का वेदों में भी कई कई पर, पुराणों में भी 6 पुराण तो 18 पुराण में से सात्विक पुराण, कुछ राजसिक पुराण, तामसिक पुराण, ऐसा भी विभाजन है। तो जो जिस गुण से प्रभावित है उसको वहां से कैसे ऊपर उठाया जाए, ऐसे कुछ प्रसंग, ऐसे कुछ विधि विधान उन उन पुराणों में कहे गए हैं। कि कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, इनका भी गुणों से संबंध है। देवताओं की पूजा है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्थ, ये भी कहा है। ऊपर कौन जाएंगे? सत्वस्थ, सत्वगुण में जो है ऊर्ध्वम गच्छति ऊपर जाएंगे। मध्ये तिष्ठति कौन? राजसा, जो राजसिक है मध्ये तिष्ठन्ति और अधा गच्छन्ति तामस, तामसिक है तो अधा मतलब पाताल की ओर तमोगुणी जाएंगे, स्वर्ग की ओर सत्वगुणी जाएंगे। मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, लेकिन जो गुणातीत है वे स्वर्ग से भी परे जाएंगे। स्वर्ग कोई फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम सर्वोच्च गंतव्य स्थान नहीं है, उसके परे भी भगवान का स्थान है। वहां जाने के लिए गुणातीत होना पड़ता है और वहां पर भक्ति आ जाती है, भगवत प्रेम आ जाता है। भगवान तो दैवी ईशाही गुणमयी मम माया दुरत्यय, भगवान ने कहा मेरी जो माया है, माया है कैसी? गुणमयी माया है। गुणमयी मतलब त्रिगुणमयी माया है। मेरी माया त्रिगुणमयी है, आनंदमय, ये माया उस माया मतलब फुल ऑफ, किसी से बना हुआ संपूर्ण, कृष्णमय, जगन्नाथमय, अन्नमय, आनंदमय, तो त्रिगुणमय। मेरी माया कैसी? त्रिगुणमयी माया है। दैवी ईशा ही गुणमयी मम माया दुरत्य, और मेरी माया होने के कारण इसके प्रभाव से मुक्त होना कठिन है, भगवान ने ही कहा। लेकिन हाँ, फिर कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ उपाय है, भगवान कहते माम एव प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, माम एव, केवल माम ही नहीं कहा, माम एव मेरी ही शरण में, मतलब जो बोल रहे हैं उनकी शरण में। कौन बोल रहे है? गीता, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्ण मतलब कौन? कृष्ण मतलब कृष्ण, भगवान के भगवान, कृष्ण मतलब देवता नहीं, कृष्ण मतलब मनुष्य नहीं, कृष्ण मतलब तो माम ये वही प्रपद्य, मेरी शरण में जो आता है फिर मैं क्या करूंगा? मायामीताम तरंति ते, मायामीताम मायाम तरंति ते, जो शरण में आएंगे वे तर जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा मामेकम शरणम प्रश, मेरी शरण में आ जाओ। तो कोई बड़ा कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड कहते हैं, तो किसी घर आप जाते हो प्रभुपाद, ऐसा कॉमन आपने सुना होगा उदाहरण, तो आपको तो डॉग को फेस करना पड़ता है। मित्र तो अंदर कहीं बैठा है आराम से, बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान कह के लिख के कुत्ता भी बांध दिया है। तो उस मित्र के घर में पहुंचना है तो पहले तो भों भों, उसको बांध भी नहीं दिया है, तो फ्री डॉग मानो शेर ही है, ऐसा खिला पिला के उसको ऐसा बना दिया है, तो वो आपको तो वो जाने नहीं देगा, वो अपनी रखवाली कर रहा है, उसका अपना धर्म है, भौंकने का धर्म उसका है, ऐसा प्रकृति ने उसको बनाया है। डॉग मस्ट बार्क, अदरवाइज वो डॉग नहीं, वो धर्म नहीं। कुत्ता तो हर एक का, हर योनि में अपना अपना उसका धर्म है। तो फिर क्या करोगे आप? मित्र के पास तो पहुंचना है, मित्र को मिलना है, लेकिन मित्र और आपके बीच में कौन है? ये बड़ा बलवान भौंकने वाला कुत्ता है, तो कैसे पहुंचोगे मित्र के पास? क्या करोगे बताओ? प्रैक्टिकली क्या करते हैं आप? कुछ बिस्किट कुत्ते को दो बिस्किट भी और हाथ को भी खाएगा वो। ओके, दैट इज वन, एक आइडिया है। तो बिस्किट खा लिया, फिर भौंकना तो दोबारा उसको भौंकना था, और आपने तो उसको शक्ति दिया बिस्किट खिला के, तो उसका उपयोग भौंकने के लिए करेगा। हाँ, मित्र को फोन कर सकते हैं। ओके, या बेल बजाओ, फिर मित्र या कुछ करो, समहाओ मित्र को आवाज दो, कुछ पत्थर फेंको कुछ करो, समहाओ उसका ध्यान आकर्षित करो, मित्र का, मैं आया हूं, पाही माम त्राही माम, रक्षा करो इस कुत्ते से। तो फिर क्या होगा? मालिक जब मैदान में उतरेगा तो वो वही भौंकने वाला कुत्ता अपनी पीछे की, जो पीछे की होती, पीछे ही होती है वो दूम, वो उसके दोनों पैर के बीच में ऐसा डाल के हिलने लगेगा, या हो सकता है मालिक के चरणों को चाटने लगेगा, या बैठ जाएगा ऐसा मालिक को देखा, ऐ जो भी नाम लेके कहेगा, तो मालिक ने कहा तो फिर आपका रास्ता साफ हो गया, क्लियर। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति, भगवान जो मेरी शरण में आता है मायामेताम तरन्ति, माया से तर सकता है, अदरवाइज मम माया दुरत्या, इस माया के चंगुल से बचना, उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना कठिन है। गोपीनाथ की जय, राजा गोपीनाथ। तो ये संसार का तो हम लोगों ने विभाजन किया है, अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म, धर्म और देश ये बड़े कारण, और भी कई कारणों से संसार के टुकड़े किए जाते, विभाजन किया जाता है, या आधे पुरुष आधे स्त्रिया, ये भी विभाजन, कई सारे गरीब और कुछ श्रीमान लोग विभाजन हो गया, कुछ काले कुछ गोरे विभाजन हो गया,
तो भौतिक जगत में ये विविधता दिखाई देगी, लेकिन हम सभी की समस्या एक ही प्रकार की है। हम जो भी है, गरीब श्रीमान या हिंदू मुसलमान या देशी विदेशी स्त्री पुरुष, हम सभी की समस्या एक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक समस्या है, और वैसे हम सभी को भगवान ने एक जैसा ही प्राय बनाया है। ज्यादा भेद नहीं है, सभी के नाक है ना, सभी के नाक, लेकिन सभी का नाक भिन्न भिन्न है। कोई भी दो नाक एक जैसे नहीं मिलेंगे, फिर मानना पड़ेगा जिसने भी नाक ही बनाया, केवल नाक ही या कान भी, कान भी देखो, सभी का कान है लेकिन हर एक का कान, सो मच वैरायटी, कितनी विविधता है। यस, तो ये सारा ये बाहरी प्रदर्शन है या कुछ, तो उससे ये एक निष्कर्ष तो ये है कि हम सभी को एक ही भगवान ने बनाया है, एक ही भगवान की माया या एक ही भगवान की प्रकृति है। हर देश के अलग अलग सृष्टिकर्ता नहीं है, नेपाल के एक, बांग्लादेश के, सिक्किम के तीसरे, या चाइना के, मंगोलिया के, अलग अलग सृष्टिकर्ता अलग अलग ने हमारे शरीर बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। साम्य एक ही है, एक ही सृष्टि, संसार भर के मनुष्य। टॉयलेट्स तो सर्वत्र है, सभी देशों में टॉयलेट्स है, ऐसा कोई देश नहीं कि जिस देश के लोगों को टॉयलेट की आवश्यकता नहीं हो। वेरी कॉमन, कॉमन क्या, सेम थिंग, बालो क्रीड़ा अवस्था, बाला अवस्था क्रीड़ा सकता, संसार के जितने बालक है उनको क्रीड़ा में आ सकती है। एक समय मैं सोचता था कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो बालक है वो खेलते नहीं होंगे, ऐसे मेरी कुछ मान्यता थी, कि मैं जो समझता था कि वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी सीरियस कंट्रीज, और वहां साइंटिस्ट है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, तो बचपन से ही वहां के बच्चे वगैरह सारा टेलीस्कोप वगैरह लेके बैठते होंगे और कंप्यूटर्स या माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शक यंत्र। ऐसे हम इंडियन है या हम भारत के हैं, हम गांव के हैं, इसीलिए हम लोग खेलते रहते हैं, लेकिन पाश्चात्य देश के बच्चे थोड़े ही खेलते होंगे, ऐसा मैं सोचता था। सीरियसली आई वॉज थिंकिंग, मैं सोचता था वैसे एक समय, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं गया न्यूयॉर्क 78 में, हम हवाई अड्डे से फिर मंदिर की ओर जा रहे थे, तो स्कूल एंड स्कूल ग्राउंड एंड बच्चे खेल रहे, ऐसे क्या हुआ, हम इंडिया वापस आ गए फ्लाइट से, अमेरिका आ गए कि कहीं इंडिया में दोबारा लैंडिंग हुआ, यहां बच्चे खेल रहे, दे आर प्लेइंग हियर। तो उन बच्चों को खेलते हुए जब वहां भी देखा, तो थोड़ा मुझे, मेरी कन्विक्शन यह हो गई कि भगवान ने हम सभी को एक जैसा ही बनाया, बनाने वाला एक है,
और उन्होंने हम सभी को एक जैसा ही बनाया, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बालावस्था क्रीड़ा सकता है तो युवावस्था तरुणी रखता भी है, नो एक्सेप्शन। तो ये शंकराचार्य का ऑब्जर्वेशन है। शंकराचार्य कहे इन शब्दों में, अवृद्धावस्था चिंता मग्ना, जब वृद्ध बनता है कोई तो चिंता में मग्न होता है, चिंता से ग्रसित होता है, और इसके लिए भी कोई देश अपवाद नहीं है। ये नहीं कि ओ शंकराचार्य इस इंडियन, वो हिंदू धर्म के प्रवर्तक थे तो उन्होंने वहां का कुछ देख के ऐसा ऑब्जर्वेशन कहा होगा, लेकिन हमारे देश में नो, वी आर नथिंग टू डू, उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन बूढ़ा मतलब चिंता मगना, फिर वो इंडियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, श्रीलंकन है, ये मिडल ईस्ट का है, हिंदू है, मुसलमान है, नो क्वेश्चन, नो एक्सेप्शन। हर बूढ़ा वृद्ध क्या होगा, चिंता से ग्रसित होता है। तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि हम सभी को बनाने वाले सृष्टिकर्ता एक ही है। पृथ्वी पर हम जगह जगह पर रहते हैं, पृथ्वी कोई इतनी बड़ी नहीं है, पृथ्वी जैसे और कई और भी पृथ्वियां या ऐसे ग्रह है, प्लैनेट्स है, नक्षत्र है, तो वहां भी जीव है, ये भी जानकारी है। तो कली का जो हुआ प्रभाव है ये सर्वत्र है, सभी मनुष्य कली से प्रभावित है, जैसे यह राजा परीक्षित कह रहे हैं। जब प्रभावित होंगे तो ये सब उनके ये बोलबाला होगा, ये असत्य डकैती इत्यादि कपट कलह दंभ, इसका प्रचार होगा और प्रचार हो चुका है सर्वत्र। तो कली को चार स्थान राजा परीक्षित देते हैं, कल भी जिक्र हुआ था, द्यूतम पानम स्त्रियः शुना, चार द्यूतम जहा द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं, पानम मद्यपान, स्त्रियः अवैध स्त्री संग, शुना मांस भक्षण, ये जहा होगा, जहां होता है वहां है कली तुम रहो, यत्रा अधर्मा चतुर्विदा, जहां चार अधार्मिक कृत्य होते हैं वहां तुम रहो, कली को कहा। तो वह ऐसे स्थान तो अभी सर्वत्र पाए जाते हैं, हर चौराहे पर, हर गली गली, हर मोहल्ले में, नगर आदि ग्राम, पृथ्वी पर मैकडोनाल्ड इज अ ग्लोबल। आप भी गए हो कृष्ण करुणा प्रभाव, कई देशों की यात्रा करके आए हो, मैकडोनाल्ड एवरीवेयर, और भी ऐसे कुछ ब्रांड्स है खाने के या पीने के, सर्वत्र है, जुआ खेलने के, बिंगो, वेस्टर्न के बिंगो, कहते बिंगो, कोई आपने शायद सुना भी नहीं होगा,
हाँ कैसे ना हो, तो वहां बिंगो चलता है, बिंगो कैसे ना हो, कैसे ना हो। तो चर्चेस में लोग खेलते हैं, जुगा खेलते हैं, राइट इन द चर्च। तो जहां भी जाओ ये सब पाया जाएगा। और मैंने अभी पढ़ रहा था, मैं किसी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया और पता लगवाया कि जो वेजिटेरियन डाइट है, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, उनको कम रिस्क है किसकी, हाँ कैंसर, कैंसर कैंसर की रिस्क कम होगी उन लोगों को जो क्या करेंगे, वेजिटेरियन शाकाहारी भोजन खाएंगे। अरे ऐसे रिसर्च की आवश्यकता थी क्या? और बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए और फिर देख कंक्लूजन क्या रहा कि वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट डाइट और वो खाने से कैंसर वगैरह कम होता है। क्या मूर्ख था देखो। But little whiskey is good for your heart. Don't drink milk. Ulta prachar hoga. Milk. Doodh mein kuch dosh dekhenge aur whiskey ke mahatma gun gaayenge. Aisa bhi. Kuch research pun ka bhi ho. If I do some research or whiskey ka kya, usme kya gun hai aur doodh mein kya ugun hai. Aisa dimag chalte hai. संसार में तो हुआ। तो ये चार प्रकार के अधार्मिक कृत्य जहां होते हैं वहां वहां तुम रहो, कली को कहा। तो फिर कली ने ऐसे चार स्थान ढूंढे और वहां से फिर उसने अपना जाल जंजाल ऐसा फैलाया कि अब कहीं सुई भी रख नहीं सकते, हाँ जहां कली का साम्राज्य नहीं हो इस पृथ्वी पर, सर्वत्र उसने फैला दिया। कली ने नहीं देखा, ओ ये हाउ कुड आई गो बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर कैसे जा सकता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे दिमाग में, मनुष्यों के दिमाग में बैठा हुआ है, ये देश वह देश, ये धर्म वह धर्म। लेकिन भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की जो शक्ति है, माया भी एक शक्ति है या कली भी एक काल है, ऋतु है। तो कृष्ण के लेवल से भगवान के, जहां भी भगवान की पदवी स्थान है वहां से तो ये कोई विचार नहीं है। ये तो मनुष्यों ने क्या कुछ बना लिया, ये धर्म वो देश अपना वो, भगवान ऐसा नहीं सोचते। तो हुआ, तो ये चार कृत्यों को तो अधर्म कहा है, मांस भक्षण, नशापान, परस्त्री गमन या अवैध स्त्री संग और जुआ खेलना, इसको तो कहा है अधर्म। तो फिर धर्म क्या है, इसकी चर्चा श्री प्रभुपाद किंचित यह किए हैं। अगर ये अधर्म है, अधर्म तो महापाप भी है कह सकते हैं, तो पुण्य कर्म या भक्ति का या धर्म का कार्य कौन सा है, धर्म क्या है या धर्म के सिद्धांत क्या है,
धर्म के सिद्धांत, या श्रील प्रभुपाद जब धर्म के सिद्धांत कह रहे, वे हिंदू धर्म के सिद्धांत नहीं कह रहे, ये प्रभुपाद का पॉइंट है यहां। वो धर्म के सिद्धांत है तप, तप धर्म का सिद्धांत है, पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के सिद्धांत है। इनको धर्म के स्तंभ कहा है, पिलर्स, जैसे चार से अधिक भी हो सकते हैं, हमारे अरवड़े मंदिर में तो 84 पिलर्स का बोलबाला है, तो वह लेकिन कम से कम मिनिमम 4 तो चाहिए, तभी कोई छत को आधार मिल सकता है। तो जैसे चार पिलर्स होते चार कोने में, फिर कुछ मंजिल खड़ी होती है, इमारत बनती है। तो धर्म के भी चार स्तंभ है, ये हिंदू मुसलमान ये सब भूल जाओ, धर्म के, बस धर्म के, उसको नाम नहीं देना, नाम से सनातन धर्म नाम दे सकते हो, भागवत धर्म भी कहने से फिर आप शायद सेक्टेरियन लगेगा, या वर्णाश्रम भी कह सकते हैं, भागवत से में थोड़ा भगवान वहां कुछ भगवान का तो संकेत हो रहा है, फिर उनको अच्छा सनातन कहा जा सकता, सनातन मतलब इटर्नल, धर्म कैसा, शाश्वत धर्म, धर्म मतलब शाश्वत, जो शाश्वत नहीं है वह धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा के अनुसार धर्म मतलब वह बात है जो शाश्वत है, ऐसे प्रभुपाद कहा करते, शक्कर का धर्म है, कहते कुत्ते का धर्म भोंकना, कहने का तो शक्कर का धर्म क्या है, मीठा होना, मिठास, ये शक्कर का, जिस दिन वो शक्कर मीठी नहीं रहेगी वो शक्कर नहीं रहेगी, तो शक्कर मीठी ही होनी चाहिए, और विद्युत भी बिजली भी है, आप उसको हाथ में हाथ से पकड़े हो ये तो संभव नहीं है, बिजली मतलब शॉक स्पर्श करने से, उसका अपना धर्म है, इन्हें को ठंडा है पकड़ लिए सर, हा फीलिंग वेरी कूल, कूलिंग इफेक्ट, ऐसा तो नहीं होगा, वो बिजली नहीं है फिर, विद्युत है नहीं, अगर होती तो अपना धर्म दिखा दी, तो हर एक का धर्म है, तो आत्मा का भी धर्म है, तो उसे शक्कर सदा के लिए मीठी, नमक सदा के लिए जो भी नमकीन, बिजली, जो हर एक का धर्म है, तो आत्मा का भी धर्म है और सदा के लिए धर्म है, वो चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, इसलिए प्रभुपाद यह कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है। तो धर्म क्या है, दया धर्म का मूल है, सगा दया धर्म का मूल है, दया, दया है, तप है, सत्य है और पवित्रता है, ये धर्म के नियम है, सिद्धांत है। फिर तो हम लोग श्री प्रभुपाद चार नियमों का पालन की बात कहे, या चार नियम का पालन करना चाहिए, तो मांस भक्षण नहीं करने से फिर क्या होगा, दया आएगी, धर्म की स्थापना होगी, धर्म की जागृति होगी, वो स्तंभ जो है धर्म का दया नामक, और हृष्ट पुष्ट होगा, मजबूत होगा। नशापान नहीं करना चाहिए, दूसरा नियम होगा, नहीं करने से फिर तपस्या हो, आप तपस्वी बनोगे, तप धर्म का स्तंभ है, अवैध स्त्री संग नहीं, अपर पुरुष स्त्री का मन नहीं, उसे पवित्रता आती। पवित्रता ही धर्म है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो हुआ। और गैम्बलिंग नहीं, जुआ नहीं खेलना, उससे क्या होता है, सत्य का नाश होता है जुआ खेलने से, झूठ मूठ होता है इसमें। तो हुआ। सत्य की स्थापना करनी है, सत्य धर्म की स्थापना करनी है तो जुआ मनोधर्म, मुझे लगता है, मेरा विचार, मेरे ख्याल, ये धर्म की भाषा नहीं हुई। मुझे लगता है ये धर्म की भाषा नहीं है, मेरा विचार धर्म की भाषा नहीं है। भगवान का विचार, शास्त्र का विचार, या आचार्यों ने, शुद्ध भक्तों ने, उनके विचार, मेरे विचार तो उसमें कई त्रुटियां, कुछ संकीर्णता, कुछ कलुषितता, कुछ बहुत कुछ हो सकता है। फिर हरेक का विचार, मेरा विचार, अपना विचार, हरेक का विचार है, फिर किसका विचार से चले हम? कोई अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए। ये भी हो गया, संसार के टुकड़े टुकड़े हो रहे। हमने कहा कि देश और ये धर्म और अर्थव्यवस्था और लिंग, उम्र, इसे विभाजन होता है मनुष्यों का, मनुष्य जाति का। इसके अलावा और एक इज्म, इंडिविजुअलिज्म, गांधीज्म, कम्युनिज्म, दिस इज्म, दैट इज्म, इसके साथ और एक लेटेस्ट इज्म क्या है, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति, माई व्यक्ति, आई एम इंडिविजुअल, आप एक दूसरे इंडिविजुअल हो, इज अनदर इंडिविजुअल, ये और एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअलिज्म, तो मेरा विचार, तो हर एक अपना अपना विचार, हर एक अपना अपना पसंद, हर एक अपना अपना सिद्धांत, हर एक अपना, आई डोंट केयर, मैं औरों की मुझे कोई चिंता नहीं, बस ये मेरा विचार। तो हर व्यक्ति एक 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 अपना ही जगत बना रहा है। तो प्रभुपाद कहा करते थे, यस आप बहुत बोले, भगवान को बोलने दो, मत बोलो अभी, यू शट अप, भगवान को बोलने दो, है मेरा विचार। अरे गीता तो लेके बैठे हो, गीता तो लेके बैठे, फिर मेरे विचार, भगवान के विचार बताने चाहिए कि मेरे विचार? इसी से गुमराही होती है। फिर भगवान के विचार का आधार या कुछ मंच तो बना लेते, लेकिन कहते तो अपने विचार। भगवान ने कहा भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो दूसरा विचार क्या कहे, कर्म, कर्म योग, गीता का रहस्य क्या है, कर्म योग। अरे भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः मे मतः, माय ओपिनियन, कृष्ण ने कहा माय ओपिनियन। फिर हो गया ना, और क्या, इस कृष्णज ओपिनियन वर्सेस योर ओपिनियन, कृष्ण का ओपिनियन है, फिर अपना भी, तुम्हारा भी ओपिनियन है, टकराओगे, फिर आप गुमराह करोगे सभी को, अपने श्रोताओं को। तो गीता का रहस्य कोई कहता है कर्मयोग है, और गीता का सार अहिंसा है, ये है वो है, फिर हर व्यक्ति अपना अपना भाष्य सुनाता है, टीकाकार बन जाते हैं। और फिर जो मूल भगवान ने जो सिद्धांत समझाया है, तो वही का वही रह गया, अपने विचार अपने ख्यालों से उसको कवर कर देते हैं, ढक लेते हैं उस सत्य को। तो हुआ, तो धर्म मतलब दया, ये धर्म है। आप मांस भक्षण करते हो, आप किसी भी धर्म के नहीं हो। आप स्वयं को समझ, हम हिंदू, हम अहमदाबाद में थे प्रचार के लिए गए, किसी को लाइफ मेंबर बना रहे थे शायद, तो प्रचार के दौरान बैठे थे उनके दफ्तर में, किसी के दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि आई एम ब्राह्मिन, बोर्न ब्राह्मिन, मेरा जन्म तो ब्राह्मीण परिवार का, उन्होंने जनेऊ भी दिखा लिया, लुक एट, देख लो। लेकिन फिर उन्होंने कहा बट आई रेलिश बीफ, आप समझे, आई एम ब्राह्मीन हूं लेकिन मुझसे बीफ समझते, मांस भी और वो भी बकरी का या बिल्ली का नहीं, गाय का मांस मुझे विशेष रुचि आती है। आई ईट वगैरह तो नहीं कहा, आई ईट नहीं कहा, आई रेलिश, रेलिश कहने में मतलब बड़ा विशेष आस्वादन करता हूं मैं, किसका, तो बीफ। बट आई एम, मैं कैसा हूं, आई एम अ ब्राह्मिन, जनेऊ देख लो। उन्होंने कहा बाप रे बाप, वाह रे वाह, वाशाबास, ब्राह्मिन, ब्राह्मीण हो तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जो ब्राह्मण गाय के पुजारी, वो गाय के बिना, गाय के दूध और घी और पंचगव्य के बिना, जिनका, जिस ब्राह्मण का कार्य आगे नहीं बढ़ता है, वो ब्राह्मण अगर उसी गाय की हत्या करे, ये कलि का प्रभाव है। उसी अहमदाबाद में और एक समय हम गए, आपको बताया होगा, तो यज्ञ हो रहा था, तो 1008 कुंडीय यज्ञ, कितने है, 1008 कुंड बने थे, उतने ब्राह्मण पंडित भी बैठे थे, स्वाहा स्वाहा चल रहा था, ठंडी के दिन थे, तो एक हम लोग घूम के देख रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, एक एक कुंड को देख रहे थे अलग अलग, तो एक कुंड के ऊपर ऐसा मजा देखा, मजा क्या, प्रातः काल का समय, और वो साबरमती के नदी में ही, इन द रिवर बेड वो हो रहा था, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी थोड़ी, तो ठंडी से बचने के लिए इस महात्मा ने क्या किया, अपनी सिगरेट, नॉट सिगरेट, बीड़ी उसने फूकना शुरू किया, लेकिन जलाई कैसे बीड़ी, अग्नि तो पहले थी, उसने सोचा थोड़ा दिया सलाई बचाते हैं, तो और एक दिया सलाई मैस्टिक जलाने के बजाय आगे जो अग्नि थी उसी में जला लिया और फूकने लगे, और एक हाथ से स्वाहा, दूसरे हाथ से स्वाहा, काम हो गया। सो ये दिस इज, ये दूसरा हो गया तपस्या, नशापान नहीं करने से तपस्या नामक जो स्तंभ है फिनिश्ड। और फिर अवैध स्त्री संघ के भी कई उदाहरण, इस कली के जो चेले और जुआ खेलने के भी, चुहे तो चर्च में खेले जाते हैं और स्थानों पर भी, धार्मिक स्थानों पर भी, तो हुआ मतावलंबी श्रील प्रभुपाद इस शब्द का उपयोग कर मतावलंबी मत का अवलंबन करना। मत मतांतर तो कई है, धर्म एक है, मत अनेक है, मत फैले हुए और कई कई मत को मिला के फिर एक धर्म बन गया और कुछ मत ओपिनियंस कुछ विचार उससे दूसरा धर्म। लेकिन धर्म तो सभी मनुष्यों का एक है, वो धर्म है, धर्म के चार सिद्धांत वाला ये धर्म दया धर्म है, सत्य धर्म है, तप धर्म है, पवित्रता धर्म है। तो ये महत्वपूर्ण है, दया इस सिद्धांत का पालन करते हो कि नहीं, फिर आप जहां पूजा पाठ के लिए जाते हो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे, उसमें मीनार है या गुंबज है या फ्लैट है, अलग अलग धर्म के अपने अपने आर्किटेक्ट है, या उस अलग अलग धर्म मतावलंबियों के अलग अलग वेशभूषा है, तिलक अलग है या रूढ़ी प्रभुपाद लिख रहे अलग अलग रूढ़िया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण क्या है, दया है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, तप है कि नहीं, और पवित्रता है कि नहीं। ये चार सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ये सार है, सिद्धांत है। फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ बाहरी परिवर्तन हो सकता है, कुछ वेशभूषा में, कुछ रूढ़ी में, कुछ इसमें उसमें, कोई ऐसे खा सकता है और कोई ऐसे भी खा सकता है। उद्देश्य क्या है, खाना है, दैट इज कॉमन। किसी का दाहिना हाथ नहीं हो सकता है, कट गया तो बाएं हाथ से खाता है, या कुछ लोगों के दोनों हाथ नहीं होते, पता नहीं कैसे खाते होंगे, लेकिन खाना दिस इज अ बेसिक थिंग। फिर हाथ से खाया कि चम्मच से खाया, और उसमें भी कुछ कोई सही गलत थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन मुख्य बात तो ईटिंग है और नरिशिंग द स्टमक या तो अधिकतर प्रचार और बोल बाला कहो या लड़ाई झगड़े, तो जो ये जो गौण बातें हैं, वेशभूषा कैसी है, आर्किटेक्ट कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, और जो मूल जो सिद्धांत है उसकी ओर ध्यान, नमः। वो हमारे भाई नमाज पढ़ते हैं, नमः कृष्णाय नमः, नमः से नमाज हो गया, कोई ज्यादा अंतर शब्द में भी कोई अंतर नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं तो कोई ज्यादा अंतर हुआ, डजंट मैटर, तुम ऐसे करो सही। फिर हमारे भक्त कुछ साष्टांग दंडवत करते हैं, तो हमारे दूसरे भाई पंचांग दंडवत, जैसे नमाज के समय झुकते हैं, हम लोग भी वैसे भी कभी झुकते हैं, क्या डिफरेंस है, अंदर का भाव क्या चल रहा है। आपने ऐसे हाथ किए अंजलि को, ऐसे इसके पीछे भाव क्या हो रहे हैं, भगवत भावना ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो दया नहीं है तो यही देखा जाता, अधिकतर संसार में दया का अभाव है, मांस भक्षण सर्वत्र हो रहा है। इसीलिए सभी ने बुद्ध देव आए,
बुद्ध देव के समय जितनी हत्या होती थी, कत्तलखाने चलते थे, इसलिए बुद्ध देव उनका जो मुख्य सिद्धांत था दया, दया धर्म का मूल है, अहिंसा का प्रचार किए बुद्ध देव। फिर 500 साल के बाद ईसाई मसीह हुए, जीसस क्राइस्ट, तो उनको उनके 10 कमांडमेंट्स है, 10 उनके भी कुछ सिद्धांत सूत्र है, 10 कमांडमेंट्स के, उसमें से मुख्य है दाउ शैल नॉट किल। हे मनुष्यो, दाउ शैल नॉट किल, तुम हत्या नहीं करोगे। सेम प्रिंसिपल। और जीसस अगर किसी विशेष गुण के लिए विख्यात रहे, आज भी है, ही वॉज मर्सीफुल, दया, उनका दया प्राणियों के ऊपर, सभी के प्रति दया। उनका दाव शाल नटके हो, किलिंग होते ही दया समाप्त होती है। वो अमेरिकन्स जो अफगान में जब युद्ध कर रहे थे, अफगान में अब भी चल ही रहा है, लेकिन शुरुआत जब हुई तो अफगानीज के ऊपर कुछ ऐसे इलाके थे जहां आर्मी के सर्वत्र फैलने के कारण कुछ गांवों में, कस्बों में कुछ भोजन नहीं पहुंच रहा था, तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स वो भोजन के पैकेट्स बरसा रहे थे ऊपर से। लेकिन वो पैकेट्स में क्या था, मीट, मीट पैकेट्स, मांस के पैकेट्स। अभी तक अमेरिकन्स और यूरोपियंस नहीं समझे हैं, जैसा खाएगा व्यक्ति अन्न वैसा मन, जैसा जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा सिद्ध, जैसा अन्न है वैसे ही बनता है मन। आहार शुद्धि से बनती है विचार की शुद्धि। तो हिंसा, हिंसक वृत्ति बढ़ती है मांस भक्षण से। तो जिनके साथ लड़ रहे थे उसमें से आतंकवादी भी जहां कहीं छिपे थे या उनके साथ लड़ रहे थे, तो उन्हीं को मांस भक्षण कराने से क्या होगा, लड़ने की और प्रवृत्ति बढ़ेगी, अधिक हिंसा बढ़ेगी। उसके बदले में हरे कृष्ण भक्तों को कॉन्ट्रैक्ट देते और गोविंदास के कोई रसगुल्ले खिलाते उनको, जिनको बुलेट्स कहते हैं, इस्कॉन बुलेट्स, इस्कॉन की भी अपनी बुलेट्स है, बुलेट गोली है, क्या रसगुल्ले, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कहते, गुलाब जामुन इस्कॉन के बुलेट्स है। तो जो भी खाएगा, जिसको भी गुलाब जामुन की गोली खिलाएंगे, वो घायल हो जाता है। क्या घायल होता है, उसकी जो पशु वृत्ति है वो घायल होती है, उसकी जो हिंसक वृत्ति है उसकी हानि होगी, उसका नाश होगा इस गोली से। जो गोली भगवान को खिला के प्रसाद बनवा के जब उसको औरों को खिलाएंगे, ये केवल सात्विक आहार नहीं है, इसमें ये तो प्रसाद भगवान की कृपा है। ऐसी कृपा जब बरसेगी और प्रवेश करेगी तो पेट में पहुंचेगी, पेट से हृदय कुछ दूर नहीं है, पेट से वो फिर दया भगवान प्रवेश करेंगे, हृदय में प्रवेश करेंगे, कैप्चर हिज हार्ट,
तो हिंसा की यह चर्चा आई है, कलह दंभ कपट। तो एक साल भर के लिए इस पृथ्वी पर केवल गोविंदास प्रसाद, हर मनुष्य को जस्ट फॉर वन ईयर प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सभी को खिलाएंगे क्या, भगवान का प्रसाद। इस संसार का चेहरा बदलेगा, केवल चेहरा ही नहीं, पहले मन बदलेगा। और जैसा मन है वो फिर मन चेहरे पर दिखाई देता है, मन फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं, चेहरे पर तो अंदर जो है उसको पढ़ा जा सकता है। और प्रसाद के साथ साथ प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हो जाए, नाम भी हो जाए, कथा सिद्धांत भी सुना जाए, भगवान का दर्शन करेंगे तो हुआ। कईयों का उद्धार हुआ है, ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है, दीन ही नयतो छिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी जगाए मधाए। तो 500 वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तो उन्होंने ये कलि को परास्त करने का साधन, अस्ति एको महान गुना, कलेर दोष निधे राजन, कलि के दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है इस कलियुग का, और वो कीर्तनादेव कृष्णश्च मुक्त संगः परम, वो कीर्तन करता है तो परिवर्तन होगा, शनै शनै परिवर्तन होगा, क्रांति होगी। तो आजकल के कई ये मतावलंबन मत मतांतर के परे वाला धर्म भागवत धर्म चैतन्य महाप्रभु सिखाए, राधा कृष्ण प्रेम, कोई व्यक्ति है भगवान व्यक्ति है तो प्रेम कर सकते हैं, आपको दे दिया कपास का ढेर दे दिया और कहा कि प्रेम करो, इसके ऊपर प्रेम करो, आपको बादल दे दिया, आपको प्रकाश दे दिया, ऐ प्रकाश से प्रेम करो, क्या कर सकते प्रकाश को, कैसे प्रेम करो। प्रेम व्यक्तित्व के साथ प्रेम होता है, व्यक्ति के साथ, पर्सनालिटी के साथ। भगवान व्यक्ति है तो संसार में धर्म का प्रचार है, भगवान नहीं है नहीं है का भी प्रचार है। भगवान है तो भगवान ज्योति है, प्रकाश है, हाँ भगवान है किंतु देख नहीं सकते भगवान, मतलब भगवान कैसे अंधे है, भगवान है लेकिन ही एग्जिस्ट लेकिन वो चलते नहीं भगवान, तो भगवान कैसे लंगड़े है। तो प्रभुपाद कहते ये कैसे भगवान, भगवान को तो पूर्णम कहा है, अरे तुम्हारा रूप है और भगवान का रूप नहीं है तो अधूरे हो गए, कुछ न्यूनता कुछ कम हो गए भगवान तुमसे, तुम्हारा रूप है, तुम देख सकते हो, तुम चल सकते हो, और ये संसार का सृष्टि करता भगवान देखता नहीं है, चलता नहीं है, सुनता नहीं है, सूंघता नहीं है, ये कैसा तुम्हारा गूंगा या लंगड़ा भगवान, ये क्या हो, ये भगवान नहीं है, ये भगवान की परिभाषा नहीं है। तो ऐसा प्रचार संसार में खूब है, नहीं नहीं है कहने वाले का प्रचार है, भगवान है तो निर्गुण है, निराकार है, ये है वो है, ऐसा है प्रचार है, ये अहम ब्रह्मास्मि का प्रचार है, ये अधूरा सत्य है उसमें। पूर्ण सत्य तो भगवान सर्वांग सुंदर है, तो ये चैतन्य महाप्रभु सिखाए। तो वही शाश्वत सनातन भागवत धर्म को जागृत किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और प्रेम करना सिखाए, प्रेम उपमार्थो महान, पंचम पुरुषार्थ सिखाए, प्रेम करना सिखाए। नहीं तो चल रहा था धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चल रहा था, और भी कुछ कर्म कांड ज्ञान कांड चल रहा था, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने द टॉप मोस्ट धर्म सिखाया, वो है प्रेम का धर्म। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशय नमः। तो नया तो नहीं, वही प्राचीन शाश्वत धर्म की नींव डाले 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और यहां अगर ये चर्चा हो रही है, ये तात्पर्य पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद के हम यहां भागवत में, ये चैतन्य महाप्रभु के कारण ही। और विश्वभर में अब इसका बोलबाला है, इस हरि नाम का सर्वत्र प्रसाद उपलब्ध है, सर्वत्र राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना है, तो जो स्थिति वैसे 500 वर्ष पूर्व थी, जब अद्वैत आचार्य आए और उन्होंने विशेष निवेदन किया प्रभु को, आपको पधारना होगा, आपको पधारना हो, तो चैतन्य महाप्रभु पधारे, तो वो स्थिति ऐसे अब भी विद्यमान है कहीं कहीं पर, या तो वहां वहां चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाना है। चैतन्य महाप्रभु आए और 4.5 वर्षों तक तो कई ज्यादा प्रचार प्रसार भारत से सीम भारत में ही हो रहा था, फिर श्री प्रभुपाद गए इस आंदोलन को फैलाने विश्व भर में, और कुछ 41 वर्षों में ही अब हरे कृष्ण लोग, देखो हरे कृष्ण लोग कहां टोक्यो में, हरे कृष्ण लोग मास्को में, हरे कृष्ण लोग लंदन में, हरे कृष्ण लोग, और भगवद गीता सर्वत्र हिब्रू भाषा में भी भगवद्गीता, और स्वाहिली भाषा में भगवद गीता, और गोविंदास रेस्टोरेंट साउथ अफ्रीका में गए तो वहां विठोबाज रेस्टोरेंट इसका अन भक्तों ने शुरू किया, विठोबाज क्या विठोबाज 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 या पांडुरंग से ऐसा कुछ हो गया डर्बन में। तो इसको जैसे अधिक अधिक फैलाएंगे, जैसे के साथ धर्म संस्थापनार्थाय सत्य धर्म दया धर्म पवित्रता धर्म और तप धर्म की स्थापना हो, ये कार्य आपको करना है, स्वयं को धार्मिक बनना है और उनको भी ज्योत से ज्योत मिलाते चलो। मराठा थी तुका मेळवावा, वैष्णव धर्म पढ़वावा, मराठा जो भी है सभी के लिए है ये धर्म। हरि ओ गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ।